ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 हरे कृष्णा। आज हम 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का एक श्लोक पढ़ेंगे। आप सब सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? पीछे तो आपसे निवेदन है कि बड़े ध्यान से अनुवाद तात्पर्य सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 10 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 13। नैसाति दुस्सह छुन्मा नैसाति दुस्सह छुन्मा त्यक्तो दमपि बाधते त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोज पिबन्तं त्वन्मुखां भोज अच्युतं हरिकथामृतं अच्युतं हरिकथामृतं नैसाति दुस्सहा छुन्मा त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतं नैसाति दुस्सहा छुन्मा त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतं न नहीं ऐसा यह सब अति दुस्सह सहने में अत्यंत कठिन छोत भूख माम मुझको त्यक्त उदम जल ग्रहण करना छोड़ देने के बाद अपि भी बाधते बाधा नहीं डालता पिबंतम पीते रहने पर त्वत मुख अम्बुजा त्वत मुख अम्बुज अच्युतं आपके कमल मुख से निकला हुआ हरि कथा मृतम कृष्ण कथा का अमृत। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद इस प्रकार है। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचा रही है। आप लोग दोहराएंगे, मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह भूख तथा प्यास मुझे किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचा रही है। तात्पर्य, 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे, किंतु महाराज परिचित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए समिक ऋषि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। अतः मैंने उस मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे साप दे दिया, किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ। मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास वादक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। सारा संसार आध्यात्म प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म या आध्यात्मिक आत्मा है और उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए संसार कृष्ण कथा के अमृत से सर्वदा अनभिज्ञ है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन दार्शनिक धर्मविदों तथा सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य है। कृष्ण तथा कृष्ण कथा के अभिन्न रूप में विशेष आकर्षक है, इसलिए परम ब्रह्म कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षक कहलाते हैं। अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है और अंबुज का अर्थ होता है कमल। सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। कहा भी गया है, मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो वा मिथो अभिवद्येत ग्रह व्रतान अदांत गोपी विसतांत मिश्रं पुनः पुनः शर्वित चर्वणान। भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नारकी स्थिति की ओर बढ़ते जाते हैं और एक बार चढ़ाए हुए को पुनः चबाए हुए को पुनः चबाते रहते हैं। उनमें न तो किसी के उपदेश से न अपने आप न ही दोनों के द्वारा कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। श्रीमद् भागवतम 7:5-30, संप्रति सारा मानव समाज चर्वित चर्वणानाम करने में लगा हुआ है, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। लोग एवं लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरा शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमानी, इस मृत्यु जन्म के चक्र को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावनामृत नितांत आवश्यक है, किंतु जब तक सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का न तो आनंद लिया जा सकता है, न ही आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंद में जीवन भोगा जा सकता है। जब हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है वे सारी भौतिक आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं, किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते हैं वे कृष्ण भावनामृत जहां भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं वहीं अभक्तों को यह देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनुवाद। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचा रही है।
ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मयं ददाति। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलन श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपम सगराजत सागना रघुनाथ तन्मितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं कृष्ण श्री राधा कृष्ण पदान सागना ललिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता सप्त कांचन गौरांगे पंच कल्प माता जी को बोल जाय श्री खड़े नहीं हो रहे हटाओ हरे श्लोक आपने पहले सुना है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की सूचना दे रहे हैं। इस श्लोक का उच्चारण परीक्षित महाराज कर रहे हैं इस दसवें स्कंद के आरंभ में। परीक्षित महाराज शुक्रदेव गोस्वामी से निवेदन करते हैं, क्या उन्होंने कहा कि आप आत्मज्ञानी हो, आपके पास कृष्ण लीला का पूरा ज्ञान है, आप हमें ज्ञान दीजिएगा। और इस दसवें स्कंद में आप पढ़ते हो भगवान प्रकट हुए, कैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान की लीलाओं के विषय में। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इस्कॉन के भक्त ठीक रूप से भगवान की लीलाओं को समझें, इसीलिए प्रभुपाद जी ने दसवें स्कंद को सार रूप में प्रस्तुत किया पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में। ये आवश्यक है कि हम भगवान की लीलाओं को ठीक रूप से समझें। तो प्रेक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, परीक्षित महाराज मृत्यु के द्वार पर थे, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है। परीक्षित महाराज वैसे तो धार्मिक राजा थे, राज ऋषि, राजा भी थे और ऋषि भी थे। जब वो माता के गर्भ में थे, उन्हें परम भगवान का दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त हुआ था एक पल के लिए, और उसके द्वारा ऐसा आनंद अनुभव हुआ कि वो चेहरे को देखने पर किसकी सारी जिंदगी जिस चेहरे को देखते थे ये सोचते थे, ये तुलना करने का प्रयास करते थे, ये वही चेहरा तो नहीं है जो मैंने माता के घर में देखा था। इसलिए उनका नाम था परीक्षित, इसका अंग्रेजी में अर्थ है एग्जामिनर। तो परीक्षित महाराज जंगल में थे, प्यासे थे, पानी की खोज में एक कुटिया में पहुंचे। ये उम्मीद की थी कि कुटिया में उनका स्वागत होगा। शास्त्र में कहा गया है चाहे शत्रु भी आपके घर में आए उसका स्वागत होना चाहिए, सबसे उत्तम प्रकार का स्वागत है आप उन्हें बिठाओ और प्रसाद खिलाओ। प्रसाद नहीं खिला सकते तो उन्हें बिठाकर पानी पिलाओ, पानी भी नहीं पिला सकते तो कम से कम बैठने का स्थान दो, ये भी नहीं दे सकते तो कम से कम मीठे शब्दों से स्वागत करो, इसकी तो कोई कीमत नहीं है। पर परीक्षित महाराज की तरफ समीका मुनि ने देखा भी नहीं, तो उन्होंने बड़ा अपराध महसूस किया और एक मरे हुए सांप को उनके कंधे में चढ़ा दिया। जब उनके बेटे ने देखा कि राजा की ये हिम्मत, तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि 7 दिन के पश्चात क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। एक रूप से वो भाग्यवान भाग्यशाली थे, क्योंकि साधारण व्यक्ति को 7 सेकंड की सूचना भी नहीं मिले मृत्यु से पहले। तो परीक्षित महाराज ने उस समय के संतों को निमंत्रण दिया और सबसे यही पूछा कि जिस व्यक्ति का मृत्यु, जो व्यक्ति मृत्यु के निकट हो, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी के उपदेश को उन्होंने स्वीकार किया। तो परीक्षित महाराज प्यासे थे और भूखे भी थे, उन्होंने जैसे उन्हें सूचना मिली कि उन्होंने उनकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के पश्चात, तो उन्होंने खाना भी बंद कर दिया और कुछ पीना भी बंद कर दिया। तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, मृत्यु के द्वार पर मैं था, मैंने पानी पीना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, पर इससे मुझे कोई बाधा नहीं हो रही। अक्सर आप खाओ नहीं पियो नहीं तो आपको कमजोरी महसूस होती है, कुछ किसी प्रकार का बाधा महसूस होता है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं मुझे कोई बाधा नहीं हो रही। क्यों क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि मैं आपके कमल मुख के द्वारा अमृत प्राप्त कर रहा हूं। और क्या था वो अमृत? कृष्ण कथा। तो दूसरे शब्दों में कृष्ण कथा में हमें रुचि लेनी चाहिए। भौतिक संसार में जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, भौतिक संसार में हम सब भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे किसके लिए? भौतिक सुविधाओं के लिए। हम सोचते हैं ये सुविधा प्राप्त होगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे इत्यादि। पर चाहे आप कितनी भी सुविधा प्राप्त कर लो, भौतिक जगत में कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हमें असली सुख चाहिए तो क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण कथा, चैतन्य कथा, प्रभुपाद कथा, आध्यात्मिक कथा में रुचि लेनी चाहिए, वो है असली अमृत। तो आध्यात्मिक कथा में रुचि कैसे लोगे? शास्त्रों का अध्ययन करके। जैसे कि 10वें स्कंद में आप परम भगवान के विषय में पढ़ते हो, परम भगवान के विषय में पढ़ते हो कि भगवान कैसे प्रकट हुए, उनके पिता वासुदेव देवकी, उन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए बहुत ही गहरी तपस्या की थी। उनका सदा चिंतन क्या था? हमें भगवान प्राप्त हों पुत्र के रूप में। और इतनी गहरी तपस्या थी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए उन्होंने कुछ नहीं खाया। क्या खाया? केवल पत्ते जो पेड़ों से गिरते थे। और परम भगवान छदे क्या भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। वासुदेव देवकी भगवान के को पुत्र के रूप में पहले भी प्राप्त कर चुके थे। और वासुदेव देवकी के विवाह के पश्चात देवकी का भाई कंस उन्हें छोड़ने जा रहा था घर, जबकि आकाशवाणी द्वारा संदेश प्राप्त हुआ, हे मूर्ख, तुम्हारे बहन का 8वां बेटा तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अक्सर जो असुर भाव के व्यक्ति हैं वो केवल अपने स्वार्थ का ही सोचते हैं। तो कंस ने क्या सोचा, बहन का वध करने दो फिर ये पुत्र प्राप्त नहीं होगा। पर वासुदेव ने समझाया, तुम्हें भय तो आठवें बेटे से है, तो बहन को मारने का क्या लाभ, जब बच्चा पैदा होगा तो फिर मेरे पास मैं ले आऊँगा, फिर तुम देख लेना उसे जिंदा छोड़ना चाहिए या नहीं। तो इस प्रकार 6 पुत्र प्रकट हुए थे जिनका कंस ने क्या किया, वध कर दिया। हमारे आचार्यों ने कहा है कि 6 असुर, 6 पुत्र जिनका वध हुआ था, ये थे मारीची के पुत्र। और मारीची मन का अवतार है, और ये 6 पुत्रों द्वारा ये संदेश मिलता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 6 हमारे आध्यात्मिक जीवन के शत्रु, और जब तक हम इनके प्रभाव से नहीं बचेंगे हम परम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप परम भगवान को समझना चाहते हो, अगर आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो, हमें क्या करना चाहिए, ये 6 असुरों को क्या करना चाहिए, हाँ मत करना चाहिए। कैसे, बंदूक से, तलवार से, नहीं फिर कैसे, ज्ञान की तलवार से, जैसे भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, ज्ञान की तलवार से इस अज्ञानता को दूर करो। तो ज्ञान के सहयोग से हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से बचना है। उसके पश्चात फिर भगवान प्रकट हो पाएंगे। और भगवान जब प्रकट होते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम, भगवान गीता में कहते हैं मेरा प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही बिल्कुल दिव्यम है। दिव्यम का अर्थ है साधारण पुरुष जैसे नहीं, तीन गुणों के पार भगवान का प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। और जो व्यक्ति इसे समझ जाए वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। जैसे कि भगवान जब प्रकट हुए मथुरा में, कैसे प्रकट हुए थे, साधारण बच्चे के समान, किस रूप में, अपने दिव्य रूप में, चार हाथों के साथ सजे हुए गहने उनके साथ, और एक विदुरिया मणि भी उनके गले में थी। ये जो विदुरिया मणि है इसे आप सिर्फ वैकुंठ धाम में प्राप्त कर सकते हो, हर मिनट उसका रंग बदलते जाता है। भगवान प्रकट हुए इस रूप में क्यों, क्योंकि भगवान ये स्थापित करना चाहते थे, माता पिता को हौसला दिलाना चाहते थे, अब मैं प्रकट हो गया हूँ घबराओ मत। और फिर जब भगवान से माता पिता ने निवेदन किया साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, क्या किया उन्होंने, साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। तो परम भगवान का हर कार्य दिव्यम है, इसलिए भगवान का एक और नाम है अचिंत्या, इनकंसीवेबल। भौतिकवादी व्यक्ति से जब ये कथा सुनाई जाती है, जब भौतिकवादी व्यक्ति ये कथा सुनते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो कल्पना है, ये वैष्णव लोग तो बुद्धू बन गए हैं, कभी कोई ये संभव है कि कोई व्यक्ति चार हाथों के साथ प्रकट होगा, रेशम के कपड़ों के साथ, हीरे मोतियों के साथ, क्योंकि वो भौतिक बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं। आप वो कथा जानते हो, एक समय नारद मुनि लौट रहे थे भगवान के पास, प्रचार का रिपोर्ट देने के लिए जब रास्ते में उन्हें एक मोची मिला और एक ब्राह्मण मिला, दोनों ने एक ही प्रश्न दिया था, पता कीजिएगा हमें कितनी देर और भौतिक संसार में भटकना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मोची को तो कह देना इस जीवन की समाप्ति पर मेरे धाम आएगा, ब्राह्मण को क्या कहना, उसे अनेक और जन्म ग्रहण करने पड़ेंगे। और जब वो पूछे मैं क्या कर रहा था जब तुम मुझे मिले, तो क्या कह देना, मैं एक बड़े हाथी को सुई के छेक से निकाल रहा था। जब ब्राह्मण को पता लगा कि भगवान ने कहा अनेक और जन्म प्राप्त करने पड़ेंगे, उसे विश्वास नहीं हुआ, तो वो पूछ रहा था, अच्छा ये बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब तुम उन्हें मिले। नारद मुनि ने कहा एक बड़े हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे। वो कहने लगे ये कैसे संभव है, मुझे पता था तुम नहीं गए। जब मोची को कहा गया वो तो खुशी में नाचने लगा, कहने लगा कि जब इतना बड़ा वृक्ष जिसके नीचे हम बैठे हैं एक छोटे बीज में भगवान डाल सकते हैं, तो हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते सुई के छेक से। कहने का तात्पर्य यह है भगवान की जो लीलाएं हैं ये अद्भुत हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कृष्ण कथा सुनने में असली अमृत है, और अगर आप असली अमृत सुन रहे हो तो भौतिक भूख और प्यास जिसका प्रभाव है हम सब पर वो समाप्त हो जाएगा। आप भगवान की गोवर्धन लीला में पढ़ते हो कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया ब्रजवासियों की किसके लिए, सुरक्षा के लिए। ब्रजवासी घबरा गए थे, इंद्र देवता क्रोधित हो गए थे क्योंकि भगवान ने इंद्र यज्ञ रुकवा दिया था। जो देवता देवियां हैं कभी कभी घमंडित हो जाते हैं। इंद्र ने सोचा मुझे इन्हें शिक्षा देने दो। उन्होंने समता का बादल को कहा जाओ ब्रज के ऊपर, और तेजी के साथ बारिश बरसने लगी। आपको ये साल यूपी में अच्छी बारिश आई है, थोड़ा अनुभव है बारिश का। पर समता का बादल से जब बारिश बरसती है हर पानी का बूंद खंबे जितना भारी होता है, कितना भारी, तो आपकी छाता एक मिनट में टूट जाएगी एक बूंद गिरने पर। तो इतनी तेजी से बारिश बरस रही थी, सारे ब्रजवासी घबरा गए। भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। कौन तेजा कौन तेजा प्रति जान ही न मैं भक्ता। भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, और बड़ी सरलता के साथ। आप और हम जब वजन उठाते हैं तो दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ता है, थोड़ी देर दाहिने हाथ में थोड़ी देर बाएं हाथ में। भगवान ने तो जब गोवर्धन पर्वत उठाया एक बाएं हाथ के छोटे उंगली के नाखून के बल पर, और सारे ब्रजवासी भगवान के चेहरे को देखकर आनंद अनुभव कर रहे थे, और इतना आनंद कि जो भौतिक भूख और प्यास है उसका उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था, भगवान के चेहरे को देखकर इतना आनंद अनुभव कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भक्तों को कृष्ण कथा चैतन्य कथा प्रभुपद कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए, फिर हम भौतिक प्यास और भूख से बच सकेंगे। नहीं तो भौतिक प्यास और भूख के कारण हमारा आध्यात्मिक जीवन कमजोर हो जाता है, क्योंकि हम एक तरफ से चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन, दूसरी तरफ से हमारा भौतिक आकर्षण रहता है। तो इसलिए संतों ने कृष्ण कथा पर रुचि दी है। तो ये कृष्ण कथा का ये अर्थ नहीं कि केवल जन्माष्टमी के समय आप कृष्ण कथा सुनो और बाकी 360 दिन माया कथा सुनो। कृष्ण कथा का अर्थ है कि हमें इस विषय में रुचि बनानी चाहिए। भगवान की अनेक लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी पहले हमें भगवान की बाल लीला की का ज्ञान देते हैं। जब भगवान की बाल लीला पढ़ो तो कोई भौतिकवादी व्यक्ति कह सकता है, कहेगा ये तो माइथोलॉजी है, ये तो कल्पना है, ये संभव कैसे एक छोटा बच्चा एक पुतना जैसी राक्षसी का दूध पीते स्तन से दूध पीते हुए इसका वध हो जाए। वो समझ नहीं पाते कि भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। हर भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, पर ये समझने के लिए हमें भक्ति के नेत्र चाहिए। अथा श्री कृष्ण नमादिना भवेद व्यम इंद्रिया। परम भगवान को इंद्रियों द्वारा समझ नहीं पाओगे, सेवा के माध्यम से समझ पाओगे। तो जब नंद महाराज ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए हैं, तो वो तो जेल खाने में थे, उनकी इच्छा थी दान देने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, 10,000 मनी मन में 10,000 गायें जो सजी हुई थी गहनों के साथ ब्राह्मणों को बांट दिया। क्योंकि ज्ञान महाराज कैदी थे, संभव नहीं था कि सूचना दें भगवान प्रकट हो चुके हैं, तो मन ही मन में उन्होंने क्या किया, दान दे दिया 10,000 गायों का। तो भक्ति रसामृत सिंधु में और भगवत में कहा गया है कि अगर आप कभी ऐसी स्थिति में हो जहाँ की आप शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर सकते, तो मानसिक रूप से सेवा कर सकते हो। भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी हमें कथा सुनाते हैं। एक समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण था दक्षिण भारत में। ये गरीब ब्राह्मण कथा सुन रहा था, जिसमें कथाकार ने कहा कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर सकते हैं, तो मन से सेवा कर सकते हो। तो इस ब्राह्मण ने मन ही मन में एक बहुत ही सुंदर मार्बल का, इटालियन मार्बल का मंदिर बना लिया, बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की स्थापना की, बहुत ही सुंदर सोने से सजा हुआ सिंहासन बनाया, और रोज भारत के अनेक तीर्थों में वो जाता था जल लाने के लिए, जिससे भगवान का अभिषेक करता था। जो आप में जो ब्राह्मण हैं जो अभिषेक करते हैं, उनको अनुभव होगा कि हम साधारण जल को स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी से गंगा जल बना देते हैं, यमुना जल जला बना देते हैं। क्या वृंदावन की बात छोड़ो, बाकी शहरों में यहाँ साधारण नलके से पानी आता है, वो मंत्रों का उच्चारण करके गंगा नर्मदा सरस्वती कावेरी सब पवित्र नदियों का जल बन जाता है। तो ये ब्राह्मण खुद रोज मन ही मन में सोने का लोटा लेकर गंगा में जाता था जल लाने के लिए, भगवान का स्नान कराने के लिए, यमुना में जाता था, नर्मदा सरस्वती कावेरी जितने प्रसिद्ध नदियां हैं, उनसे रोज भगवान का श्रृंगार करता था। आपके कृष्ण बलराम मंदिर में 7 आरतियां होती हैं शायद, तो और ये ब्राह्मण रोज मन ही मन में 7 बार भगवान को भोग लगाता था, 7 बार आरती करता था। और भोग लगाने में भगवान को खीर खिलाता था। आपके कृष्ण बालन मंदिर में भी भगवान को सुबह खीर खिलाते हैं। तो खीर जैसे आपको पता हो, जब बनाते हैं तो गर्म होती है, जब ठंडी हो जाती है तो भगवान को हम भोग लगा देते हैं। ये ब्राह्मण ये सब सेवाएं मन ही मन में कर रहा था, मन ही मन में भोग बनाना, अभिषेक करना, मन ही मन में मंदिर बना, ठाकुर जी का उद्घाटन हुआ। तो इस प्रकार कई साल ये सेवा करते गया। तो एक दिन खीर बनाकर वो देख रहा था खीर ठंडी हुई कि नहीं, क्योंकि ठंडी होने पर भगवान को भोग लगा दें। तो उसने खीर में, गरम खीर में अपनी उंगली डाली देखने के लिए खीर ठंडी हुई कि नहीं। वो जैसे ही उंगली डाली, उफ, उंगली जल गई, सचमुच जल गई। तो वो आश्चर्य हो गया, ये तो सपना था, ये असल में उंगली कैसे जल गई। परम भगवान ये लीला को अनुभव कर रहे थे और हंसने लगे। जब ब्राह्मण आश्चर्य हो गया था, लक्ष्मी जी ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? भगवान ने उत्तर नहीं दिया। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने अपना वैकुंठ धाम का हवाई जहाज भेजा इस ब्राह्मण को भगवान के धाम लाने के लिए। तो कहा गया है कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कि आप शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर सकते, तो मानसिक रूप से कर सकते हो। तो वासुदेव जेल खाने में थे, पर उन्होंने मन ही मन में 10,000 गायें दे दी दान में। एक समय एक औरत आई थी प्रभा जी को मिलने दिल्ली में। तो प्रभा जी तो हर एक से कहते थे चैंट हरे कृष्णा। तो ये औरत कहने लगी, स्वामी जी आई एम चैंटिंग ऑलवेज, मैं हमेशा जाप कर रही हूँ। तो अपने कहा हाउ, कहती है मन ही मन में। तो प्रभा ने कहा जब भूख लगती है मन ही मन में खाते हो? कहा नहीं। तो प्रभा ने कहा फिर जाप भी फिजिकली करना चाहिए। बट भगवान कहते हैं मन मन भावा मत भक्तो। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, जैसे भगवान की बाल लीला में आप पढ़ते हो किस प्रकार भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन दिया अपने माता को। यशोदा माता से उनके भाई बालराम ने शिकायत की थी। क्या थी शिकायत? आज हमारे छोटे भाई ने क्या खाया है? मिट्टी खाई है ना। यशोदा माता आश्चर्य हो गई। भगवान की योगमय शक्ति के द्वारा भगवान के माता पिता साथी पहचान नहीं सकते कि स्वयं भगवान है। तो यशोदा माता के घर में नंद महाराज के पास 9,00,000 गायें थी। कितनी? और ये सारे गायें सजी हुई थी गहनों के साथ। 9,00,000 गायें में कई गायें थी जो कि सुगंधित दूध देती थी। आज आपके पास कोई गाय है जहाँ सुगंधित दूध मिलता है? और सुगंधित दूध कैसे दे पाती थी? उन्हें खिलाने के लिए सुगंधित घास खिलाया जाता था। वो 9,00,000 गायें थी। तो जब यशोदा माता ने सुना कि मेरे बेटे ने मिट्टी खाई है, वो आश्चर्य हो गई थी। मेरे घर में 9,00,000 गायें हैं, इतना दूध है, मक्खन है, दही है, मिट्टी क्यों छुड़ा खाएं? तो भगवान ने कहा कि ये झूठी शिकायत है, खेलते वक्त वो हार गए थे, आपसे दांत दिलवाने के लिए झूठी शिकायत लगाई है। पर अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं मुंह खोल के दिखा देता हूँ। जब बेटे ने मुंह खोला तो क्या देखा माँ ने? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, सारे देवता देवियों का दर्शन, सारे योनियों का दर्शन। तो अगर आप ये कहोगे किसी साधारण पुरुष से भगवान ने पूरे विश्व का दर्शन दिया अपने मुंह में, वो विश्वास करेंगे नहीं, कहेंगे ये कैसे संभव है। इसलिए हमें सेवा के माध्यम से और प्रमाणिक भक्तों द्वारा भगवान की लीला प्राप्त करनी चाहिए। इसी अध्याय में शुकदेव गोस्वामी कह चुके हैं कि भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, ये हमने प्रमाणिक परंपरा द्वारा प्राप्त करना चाहिए। ये एक ही औषधि है हर समस्या के लिए। क्या क्या औषधि है? कृष्ण कथा। तो हम सबका भाव होना चाहिए कि कृष्ण कथा में रुचि लें। और भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं, आप पढ़ते हो किस प्रकार भगवान ने शिव जी की सुरक्षा की। शिव जी बड़े दयालु हैं, आशुतोष, जल्दी से सरल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। तो उन्होंने एक वर दे दिया था किसे? मृगासुर को। क्या था वर? जहां भी हाथ रखेगा उसके नीचे जो भी वस्तु होगी नष्ट हो जाएगी। और ये वर प्राप्त होते ही असुर मृगासुर ने क्या किया? हाथ फैलाया शिव जी के ऊपर रखने के लिए। शिव जी को दौड़ना पड़ा, जहां भी वो दौड़े उनके पीछे मृगासुर आ रहा था। अंत में ये पहुंच गए कहाँ? भगवान के धाम स्वेदादेव में। और भगवान को पता था क्या लीला बीत रही है। भगवान ने सदानंद ब्रह्मचारी का रूप ग्रहण करके वहां खड़े हो गए। जब मृगासुर वहां पहुंचा उसने पूछा, यहां शिव जी तो नहीं आए थे? क्यों 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 पीछा कर रहे हो? उन्होंने मुझे वर दिया है और मैं उस वर का उपयोग करना चाहता हूं उनके माथे पर, उनके सिर पर। वो बात छुप रहे मेरे से। भगवान ने कहा, जानते नहीं जब से शिव का अनबन हुआ है दक्षा के साथ, उनके वरों में कुछ ताकत नहीं रही। पहले अनुभव तो करो सच है झूठ, अगर ये झूठा वर था फिर मारोगे तो अपराध नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये तो ठीक कह रहे हो। और फिर क्या? अपने हाथ को रखा अपने सिर पर, क्या परिणाम हुआ? फिर पड़ गया। तो इस प्रकार भगवान की अनेक 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 लीलाएं हैं। ब्रह्मा जी भगवान की अद्भुत लीलाओं को देखकर आश्चर्य हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस बालक की परीक्षा मुझे लेने दो। भगवान गए थे पिकनिक में। आपको स्कूल के विद्यार्थी पिकनिक में जाते हो, भगवान गए थे पिकनिक में और सारे साथी बार बार देख रहे थे उनके बछड़े कितनी दूर पहुंचे हैं। उनको चिंता थी कहीं ये बछड़े नजरों से दूर तो नहीं चले जाए। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना, वो जाएंगे तो मैं ले आऊंगा। खैर ऐसे ऐसे बछड़े नजरों से दूर हो गए और उनको ब्रह्मा जी ने क्या किया? किडनैप, अपहरण कर दिया। और जब बाद में ग्वालों को भी अपहरण कर दिया, तो भगवान समझ गए। भगवान का व्यवहार तो ऐसे था जैसे वो चिंता में है, उन्हें कुछ पता ही नहीं कहाँ ये छुप गए। तो भगवान ने क्या किया? क्या किया? अपना विस्तार किया, अनेक ग्वालों और क्या हो गया, क्या हो गया शुआ? ओके, और 5 मिनट क्लास चलेगी, बैठ जाओ। तो भगवान ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो चिंता में थे, उन्हें ये डर था अब मैं घर जाऊंगा तो इनसे क्या कहूंगा। हरि बो हरि बो। भगवान चिंता में थे, भगवान चिंता में थे कि अगर घर जाएंगे गोपियां पूछेंगी कहाँ है हमारे बेटे, कहाँ है हमारे बछड़े। भगवान ने क्या किया, क्या किया, अपना विस्तार किया अनेक ग्वालों और बछड़ों के रूप में। इसके पीछे एक और भाव था, जब पड़ोस की गोपियां देख रही थी यशोदा माता का कितना स्नेह था और किस कितने ध्यान से अपने बेटे की सेवा करती थी, पड़ोस के गोपियों में भाव भी था कि हमें भी ऐसा मौका मिले ऐसी सेवा करने का। तो भगवान ने अपना विस्तार किया और अनेक बछड़ों और ग्वालों के रूप में लौटे, और क्या परिणाम हुआ, माता का प्रेम अपने ग्वाले बेटे के प्रति और भी अधिक था, गायों का प्रेम बछड़ों की तरफ और भी अधिक था। क्यों, क्यों, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु तत्व के रूप में उन्होंने अपना विस्तार किया। इस प्रकार की लीला लगभग 1 साल चलते गई, किसको पता नहीं लगा। फिर ब्रह्मा जी ने एक दिन देखा ग्वाले और बछड़े खेल रहे हैं, बछड़े घास खा रही हैं। ब्रह्मा जी ने देख सोचा जिन्हें मैंने क्लोरोफॉर्म दिया था, जैसे आप क्लोरोफॉर्म लेते हो ऑपरेशन से पहले, तो ब्रह्मा जी ने 1 साल का बहुत लंबा क्लोरोफॉर्म दे दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा देखने दो जिन्हें मैंने सुलाया ये तो नहीं है। जब उन्होंने देखा कि जिन्हें उन्होंने सुलाया वहाँ ही सो रहे हैं, फिर वो समझ गए क्या, ये परम भगवान ने अपना विस्तार किया है। तो भगवान की इस प्रकार, ये तो संक्षेप में आपको बताया, इस प्रकार भगवान की अनेक अद्भुत लीलाएं हैं और इन सब लीलाओं के पीछे गहरा भाव है। और आप पढ़ते हो किस प्रकार भगवान ने अनेक असुरों का भी वध किया, किस प्रसिद्ध असुरों का वध किया। तो ठाकुर भक्तिनो जी कहते हैं इस विषय में कि जो व्यक्ति ध्यान से इन असुरों के वध की कथा पढ़ेगा उसकी अनेक कमजोरियां जो हैं, बौद्धिक आकर्षण जो है वो कम हो जाएगा। जैसे हमारे में एक कमी है घमंड, धन हो, खूबसूरती हो, ऊंचा पद हो, हम बड़े घमंडित हो जाते हैं, है कि नहीं। आप भागवत में पढ़ते हो नल कुंवर और मणिग्रीव की कथा, किस प्रकार वो बड़े नशे में थे। जब महान संत नारद मुनि उनके पास पहुंचे, उन्हें ये नहीं समझ आया कि अपने नंगे शरीर को ढक लेना चाहिए, बड़े गहरे नशे में थे। और उसका क्या परिणाम हुआ, नारद मुनि ने उन्हें क्या दिया, श्राप दिया कि तुम क्या बन जाओ, पेड़ बन जाओ। पर कहाँ, नंद महाराज के आंगन में। और 100 सालों के पश्चात, देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो ये दो बन गए पेड़, कहाँ, नंद महाराज के आंगन में। जैसे हमारे कृष्ण बालराम मंदिर के आंगन में तमाल का पेड़ है। जब ये मंदिर बन रहा था, प्रभुपाद ने खास आदेश दिया था इस पेड़ को हाथ नहीं लगाना, तो ये पेड़ जो है अत्यंत सौभाग्यशाली है, सारा दिन हर आरती में उपस्थित रहता है। आप एक आरती में जाते हो और सोचते हो आपका दिन का कोटा हो गया, ये समाल का पेड़ तो सुबह से शाम तक हर आरती में उपस्थित रहता है, रोज क्लास में जाता है। आप तो कई बार बीमार में जाए बीमार हो जाते हो और सारा दिन राधा श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त करना है, बड़ा सौभाग्यशाली। तो नलकरण मुनि की पेड़ बन गए थे कहाँ, नलकरण के आंगन में। पर भगवान के भक्त जब वर देते हैं तो भगवान उसका पालन आवश्यक ही करते हैं। ब्रह्मा जी ने अनेक वर दे दिए थे राधिकाशिपु को, भगवान को भगवान जब प्रकट हुए राधे काशी नरसिंहदेव के रूप में तो सारे वरों का पालन किया। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कह रहे थे हंसते हुए कि हिरण्यकश्यप को वध करने के पश्चात भगवान ने कहा उनसे, ब्रह्मा से, भविष्य में ऐसे वर मत देना तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो नलकवर मणिग्रीव उन्हें वर प्राप्त हुआ था नारद मुनि के द्वारा, 100 सालों के लिए देवताओं के वो पेड़ बनेंगे और फिर भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। भगवान ने अपने उखल को दो पेड़ों के बीच में रोककर खींचा, खींचा तो क्या हुआ, पेड़ गिरे नीचे। जब ये पेड़ नीचे गिरे यशोदा माता जो रसोई में थी भागी भागी आई, क्या हुआ क्या हुआ, ये पेड़ कैसे गिरे। गौलों ने कहा आपके बेटे ने गिराए। और माता ने कहा यह संभव नहीं है, मेरा छोटा बेटा कैसे इतने बड़े पेड़ को नीचे गिरा सकता है। पर फिर नलकर्मणि ग्रीव जो पेड़ों से निकले उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, नारद मुनि का भार प्रकट किया और बड़े सुंदर स्तुतियों द्वारा परम भगवान का गुणगान किया। तो शास्त्र में कहा गया है जो व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनेगा उसके हृदय में घमन गौरव इत्यादि समाप्त हो जाएगा और विनम्रता का भाव अनुकूल हो सकता है। तो इस प्रकार कृष्ण कथा में हमें रुचि लेनी चाहिए और कृष्ण कथा में रुचि लेंगे तो किस भाव से बचेंगे, किस भाव से, किसके प्रभाव से बचेंगे, हाँ, माया के भाव प्रभाव से बचेंगे। नहीं तो हमारा मन जो है आध्यात्मिक विषय की बजाय माया के विषय का स्मरण करते रहता है। तो इसलिए भगवान क्या कह देंगे तुम्हें, मन मन भाव मद भक्त हो बद्याजी माम माम वश सत्यम दे प्रति जन प्रियोशी में। तो आज के श्लोक में परीक्षित महाराज हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं मृत्यु के द्वार पर हूँ, मैंने खाना पीना दोनों छोड़ दिया है, पर कृष्ण कथा सुनने के द्वारा ऐसा अमृत अनुभव हो रहा है कि मेरी भूख और प्यास और मुझे कोई ध्यान ही नहीं, कोई बाधा नहीं बन रही। तो इसी प्रकार अगर हम सब कृष्ण कथा चैतन्य कथा प्रभुपद कथा में रुचि बढ़ाएंगे तो माया के प्रभाव से बचेंगे। आप में से कौन कौन माया से बचना चाहता है, सब। अगर आप बचना चाहते हो तो प्रयास करने को तैयार हो कि कई लोग कई बार लोग कह रहे ना स्वामी जी आशीर्वाद हो कि हम धनी बन जाएं, वो मेहनत नहीं करना चाहते पर उन्हें आशीर्वाद चाहिए। तो अगर हमें भगवान के शरणागत होने की चुआ ही आ गया, चुहा भगवतम क्लास सुनना चाहता है, आप लोग घबराते क्यों, तो अगर आप लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग छोटे चूहे से इतना डरते हो।